कीर्तन की जरूरत है, अपने तो कीर्तन
लेता है।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मैंने सोचा था 8-10 माता जी होंगे। कमरे में अंदर आया तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आएंगे। तो आप सब भगवान के हार की सेवा करते हैं, फूलों की माला बनाना, राजभोग आदि की सेवा करना, और ऐसे भक्त लोग आप सब की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि आप सब की वजह से अर्चा विग्रह की सेवा कितनी सुचारू रूप से चल रही है। ये हर जगह देखा जाता है कि जो माताएं गार्लैंड बनाती हैं, राजभोग सेवा करती हैं और ऐसे विभिन्न सेवाएं करती हैं, जो हो सकता है कि सबके दृष्टि में या नज़र में नहीं आए, तो उतनी मान्यता उनको नहीं दी जाती है। और केवल जो भक्त सामने रहते हैं विविध प्रकार के अन्य सेवाओं में, प्रचार में, उनको अधिक मान्यता दी जाती है। वैसे जो प्रचार आदि सेवा कर रहे हैं उनको भी तो मान्यता मिलनी चाहिए अवश्य, परंतु साथ साथ जो ऐसी भी सेवा कर रहे हैं जो कि अन्यों को दिखाई न पड़े, या जो ऐसे लगे कि इतनी सबके सामने रख के नहीं की जा रही हो, ऐसी सेवाओं को भी महत्व देना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से एक सेना केवल सैनिकों के बल पर नहीं, ठीक था पहले, ठीक था, जिस तरह से एक सेना केवल सैनिकों के बल पर नहीं चलती है, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं और वो आगे चल के लड़ते हैं और कभी कभी घायल भी हो जाते हैं। परंतु यदि हम सोचें कि सेना में केवल युद्ध करने वाले सैनिक होंगे तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि उन सैनिकों के पीछे और बहुत से लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर चाहिए सैनिकों की तबीयत ठीक रखने के लिए, जब घायल हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके लिए जो भोजन बना रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि एक सेना पेट पे चलती है, केवल शस्त्रों पे नहीं, सेना पेट में चलती है, तो उनके लिए कोई भोजन बनाने वाला चाहिए, और भोजन बनाने वाले के लिए भी सामग्री बहुत चाहिए, तो कोई इन चीजों को खरीद रहा है। तो पीछे और उनको आगे चलने के लिए गाड़ियां चाहिए, तो गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए, गाड़ियों का देखभाल करने के लिए बहुत लोग चाहिए, और पीछे हिसाब किताब रखने के लिए और बहुत से लोग चाहिए। दूसरे शब्दों में सेना में जो सैनिक होते हैं, जो आगे युद्ध करने के लिए निकलते हैं, यदि वो 10 लोग हों तो उन 10 लोगों के पीछे और 20 लोग होते हैं। वो 20 लोग नहीं होते तो ये 10 लोग आगे चल के युद्ध नहीं कर पाते। जो अस्त्र है, बंदूक है, गोली है, बंदूक बनाने वाले कोई चाहिए, गोली बनाने वाले कोई चाहिए, कितने सारे लोग चाहिए जो कि पीछे रहते हैं। और जो यश मिलता है वो सामने रह के युद्ध करने वालों को मिलता है, वो भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, जब वो अपने जीवन को भी त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी भी मान्यता होनी चाहिए। परंतु उनके पीछे कितने से लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। तो ठीक उसी तरह से ये चैतन्य महाप्रभु की सेना है, और हमारा युद्ध माया के विरुद्ध, माया के साथ में है, और माया बहुत प्रबल है, माया सर्वव्यापी है, जहां भी हम जाते हैं वहां माया का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। तो इसलिए कई ऐसे भक्त होते हैं जो बाहर जाते हैं, सड़कों में पुस्तक वितरण करते हैं, घर घर में, दफ्तर में, दुकानों में जाके प्रचार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये तो करना ही चाहिए। परंतु साथ साथ में जिनको हम प्रचार करते हैं उनके लिए हम क्या चाहते हैं कि वो आखिर भक्त बन जाएं, फिर वो मंदिर में आए, और जब वो मंदिर में आएंगे तो फिर क्या करेंगे, अर्चा विग्रह का दर्शन लेंगे और मंदिर की सौंदर्य को, भव्यता को देखेंगे, भक्तों से मिलेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो यहां मंदिर के व्यवस्थापन में भी कितने भक्त लगे हुए हैं, बगीचों का देखभाल करना, मंदिर की और प्रांगण की सफाई के बारे में देखना, जल आ रहा है कि नहीं, बिजली है या नहीं, टेलीफोन है या नहीं, और सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसे कितने सारे व्यवस्थाएं हैं जो कि मंदिर को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे संप्रदाय में, हमारे संस्था में ये सारे जो सेवाएं हैं वो भी प्रचार माने जाते हैं, किसी भी प्रचार के अन्य कार्य से ये कम नहीं है, इसकी इतनी ही महत्ता है जितनी की अन्य सेवाओं की है, प्रचार की सेवाओं की है। और उसी तरह जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अर्चक विग्रह की सेवा कर रहे हों, फूलों की माला बनाने में और राजभोग आदि तैयार करने में, उत्सवों की तैयारी में, और साथ साथ में उनके पोशाक आदि बनाने में, सिलाई में इत्यादि, तो उनकी भी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अर्चक विग्रह की सेवा भी ये प्रचार है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो फूलों की माला बनाते हैं, भगवान के कपड़ों को सिलाते हैं, और हम राजभोग आदि करते हैं, कि ये कोई कम महत्व की सेवा है, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत महत्व की सेवा है। नहीं नहीं वो ला रहे, कोई ला रहे। तो प्रभुपाद के शिक्षणों के अनुसार ये भी प्रचार है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाहर जाके पुस्तकों का वितरण करना, बाहर जाके प्रवचन देना। अभी हम लोग जब जाके प्रवचन देते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, अरे कितना अच्छा प्रवचन दिया। तो ऐसी प्रशंसा होती है जो सामने होते हैं लोग, परंतु बहुत कम प्रशंसा होती है उन भक्तों के लिए जो पीछे रह के सेवा करते हैं। कल्पना कीजिए जब भक्त आएंगे, या कोई जो भक्त नहीं भी हैं वो हमारे मंदिर आएंगे और यहां आके वो देखते हैं कि जगह बहुत गंदा है, मंदिर के प्रांगण में गंदगी सब जगह फैली हुई है और अर्चक विग्रह की सेवा ठीक से नहीं हो रही है, तो वो क्या सोचेंगे कि अरे ये लोग कैसे मंदिर चला रहे हैं, इनकी भक्ति कैसी है, ठीक नहीं है। इस्कॉन में और अन्य जो मंदिर हैं उनमें बहुत एक बड़ा अंतर ये है कि अर्चक विग्रह कुछ विशेष होते हैं और अर्चक विग्रह की जो सेवा होती है और जो श्रृंगार होता है वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। अन्य मंदिरों में इस्कॉन के अतिरिक्त बहुत सारे हैं, वहां राधा कृष्ण की मूर्तियां भी भले हो सकती हैं परंतु वहां उतना आनंद नहीं मिलता है विग्रहों का दर्शन करने में, क्योंकि यहां जिस भक्ति भाव से और जितनी भव्यता से श्रृंगार और सेवा होती है वो शायद ही किसी अन्य मंदिर में होता है। क्योंकि यहां हमें यह सिखाया जाता है कि प्रतिमा न है तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, कि हे कृष्ण आप केवल प्रतिमा नहीं हैं, आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं। तो हम जब विग्रह की सेवा करते हैं तो हमें यह पता होता है कि ये केवल कोई पुतली कोई प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और इसलिए हमारे भक्त इतने भक्ति भाव से इतने लगन से श्रृंगार सेवा करते हैं, आरती पूजा और रसोई की सेवा और सिलाई की सेवा, फूल माला की सेवा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम साक्षात भगवान के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि अर्चक विग्रह की सेवा सुचारू रूप से किए जाने से लोग बहुत आकर्षित होते हैं, तो इसलिए ये भी प्रत्यक्ष रूप से प्रचार है। प्रचार का क्या मतलब होता है? प्रचार का मतलब है लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करना, भगवान के भक्ति में उनको ले आना, भगवान के चरण कमलों के आश्रय को स्वीकार करवाना, यह प्रचार है। केवल प्रवचन देना, केवल पुस्तक वितरण करना, इतना मात्र प्रचार नहीं है। यदि किसी दूसरे कार्य से, किसी दूसरे माध्यम के द्वारा अन्यों को कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षित किया जाए तो वो प्रचार है। और ऐसा नहीं है कि केवल जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं या जो बहुत विद्वान है शास्त्रों में केवल वही प्रचार कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी प्रचार कर सकते हैं, एक तथाकथित अनपढ़ भक्त भी प्रचार कर सकता है, और हमारे विग्रहों को बहुत सुंदर रूप दिलाकर भी ये बहुत बड़ा प्रचार है। क्योंकि लोग आके देखते हैं कि कितने सुंदर ढंग से सेवा हो रही है, तो ऐसे मंदिर में हम बार बार आना चाहते हैं, ये प्रचार है। और भले अन्य लोग भगवान के महाप्रसाद को का सेवन न कर पाए, फिर भी भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त मेरे लिए इतने अच्छे महाप्रसाद बना रहे हैं, इतने अच्छे मेरे लिए वस्त्र बना रहे हैं, इतना अच्छा श्रृंगार आदि हो रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ खिल उठता है। तो इसलिए ये जो सेवा आप सब कर रहे हैं और करते आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से भक्ति मार्ग में इसका महात्म्य विशेष है। आप हमारे वैष्णव भजन को देखिए, कितने सारे भजन हैं जिसमें फूलमाला की सेवा बताई जाती है, अन्य सेवाएं जैसे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, क्या है इसमें? यही तो है। और साथ साथ में देखिए जो भी राधा कृष्ण की लीलाएं ब्रज में हैं, वो सब इन फूल मालाओं से संबंधित और प्रसाद से संबंधित होती है। श्री वैष्णव संप्रदाय में भी इन चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। आलवारों का नाम तो आपने सुना होगा, ये सब महत्वपूर्ण भक्त थे। तो इनमें से अधिक जो आलवार थे उनकी एक ही सेवा हुआ करती थी, भगवान के लिए फूल माला बनाना, बगीचे का देखभाल करना, फूल उगाना और फिर उन फूलों से सुंदर मालाएं बनाना और भगवान को अर्पण करना। उनकी दिन भर की सेवा यही हुआ करती थी और आजीवन वो ऐसे सेवा करते रहे। और अनंताचार्य की कथा भी आप जानते हैं। रामानुजाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों को कि आप में से कितने भक्त तिरुमला अर्थात तिरुपति के ऊपर जो स्थान है, तिरुमला में जाके बालाजी की सेवा फूल माला करके या फूल उगा के करना चाहते हैं। किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। फिर अनंताचार्य नाम के भक्त ने हाथ ऊपर किया और वो चले गए और उसके बाद आजीवन वहीं रहे। एक ही सेवा उनकी, बगीचे को संभाल के फूल उगाना और फिर माला बना के भगवान को अर्पण करना। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मुझे संग नहीं मिलेगा, भक्तों के संग से हम दूर चले जाएंगे, प्रवचन कथा नहीं सुन पाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, ऐसे नहीं सुना। ये मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि बालाजी की सेवा ऐसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। आजीवन उसके बाद जाके वहां पर रहे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए आपकी सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कृपया ये जान लीजिए कि ये कार्य प्रचार का कार्य है, चाहे वो रसोई हो, सिलाई हो, फूल माला बनाना हो, मंदिर की सफाई हो, ये सब प्रचार है। तो इसलिए आप सबको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ये सेवा कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये सेवा और भी सुचारू रूप से बढ़ती रहे, अधिक से अधिक संख्या में भक्त खास करके माताजी भक्त सामने आए इस सेवा की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। और ये भी हम आशा करते हैं कि भक्त समाज में भी इन सेवाओं के लिए अधिक मान्यता प्राप्त होगी। और आप जो भी सेवा कर रहे हैं, अवश्य अभी भी भक्त लोग बहुत स्वीकार करते हैं कि आप सब कितनी अच्छी सेवा करते हैं, परंतु हमारी प्रार्थना ये भी है कि भक्त समाज में ये जो एक जानकारी है, एक मान्यता है आप सबकी सेवा के लिए, वो भी बढ़ती जाए। और लंबा भाषण हम नहीं देना चाहते हैं। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे तो आप अवश्य बोल सकते हैं। भक्त समाज में सब लोग अप्रिशिएट करते हैं ना? मान देते हैं इस सेवा को। वास्तव में आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको यह प्रत्यक्ष सेवा मिल रही है। जो एक भगवान के प्रति निकटता की भावना है, वो ऐसी सेवा से सुचारू रूप से, अच्छे रूप से, सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपका सौभाग्य बहुत ज्यादा है। पिछले जन्मों में आपने बहुत सी भक्ति की होगी, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
माइक है दूसरा।
प्रश्न ये है कि हम जब रसोई बनाते हैं तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? आप सब माताएं हैं, प्रश्न है, आप जब अपने छोटे बच्चे के लिए प्रसाद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? लापरवाही से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? बहुत ज्यादा ध्यान लगा के बनाते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ा इधर उधर हो गया तो तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ध्यान से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसे? क्यों इतने ध्यान से बनाते हैं? क्योंकि प्रेम है बच्चे के प्रति। तो उसी तरह से भगवान के लिए जब हम बना रहे होते हैं प्रसाद, उतने ही प्रेम भावना से बनाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी चेतना है, ये प्रेम से होनी चाहिए। जब भी मैं कहीं प्रसाद के लिए जाता हूं और कोई बच्चे वहां घर में रहते हैं, तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूं कि ये बताओ कि ये प्रसादम इतना स्वादिष्ट क्यों है? तो बच्चे जवाब देना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे से उनसे सही जवाब हम निकलवा लेते हैं और अंत में सार यही निकलता है। फिर उनको हम तीन बातें बताते हैं। प्रसादम स्वादिष्ट इसलिए होता है, इस पहला कारण है, ये भक्ति भाव से पकाया गया है, तैयार किया गया है। दूसरी बात, भक्ति भाव से अर्पण किया गया है श्री कृष्ण को, जिस वजह से श्री कृष्ण बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। और तीसरी बात कि ये भक्ति भाव से परोसा गया है या वितरित किया गया है। तो ये तीन चीजें हैं जिसके कारण प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट होता है। तीनों में से एक भी कम रह गया तो प्रसाद में उतना आनंद नहीं आता है। यदि प्रसाद परोसने के समय भी हमने ऐसे वैसे ही परोस दिया, ऐसी थाली पे ढाल दिया, तो फिर खाने वालों को आनंद नहीं आएगा। तो उसी तरह से जब भगवान की थाली में रख रहे हैं तो उनको कैसे आनंद आएगा? यदि हम जब प्रसाद लेने जाते हैं कहीं भी और प्रसाद अच्छी तरह से परोसा नहीं गया, हमें चपाती डाली गई ऊपर से ऐसे फेंका गया, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यदि हम जानते हैं कि जो बना रहे हैं आपस में वो झगड़ा कर रहे हैं बनाते बनाते, और फिर सोच रहे कि हमारे घर में आ गए, इस समय पे टीवी का प्रोग्राम चल रहा था, इस समय क्यों आ गए? यदि ऐसे बात करते करते कोई भोजन बना रहे हैं और आप उनके घर में गए हैं, तो क्या वहां भोजन स्वीकार करना अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, क्योंकि वो ध्यान से नहीं बना रहे हैं, प्रेम से नहीं बना रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, और यदि हम हमारा ध्यान रसोई में नहीं रहा, किसी और चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं, आपस में कुछ प्रजल्प कर रहे हैं, तो फिर वो प्रसाद का स्वाद अच्छा कैसे होगा? और भौतिक दृष्टि से स्वाद अच्छा होगा भी, यदि भक्ति भाव से नहीं बनाया गया तो भगवान को वो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान केवल भौतिक स्वाद को नहीं देखते हैं। जो भोग चढ़ाया जाता है भगवान को, उसमें जो असली स्वाद है, जिसको भगवान चखते हैं, वो भक्ति का स्वाद है। और यदि भक्ति भाव से बनाया जाए प्रसाद, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात प्रसाद बनाते समय वो ये होनी चाहिए कि हमारा भक्ति भाव होना चाहिए। तो प्रसाद बनाते समय हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम प्रसाद बनाने जा रहे हैं, किन के लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। तो ये अपने आप को याद दिलाना चाहिए, मैं कोई साधारण रसोई नहीं कर रही हूं अभी इस समय, मैं साक्षात भगवान के लिए भोजन बना रही हूं। और जब साक्षात भगवान के लिए हम बना रहे हैं प्रसाद, तो हर चीज का ख्याल रखेंगे, सब कुछ साफ सुथरा है ना, सारे सामग्री जो है सही ठीक ठाक स्वच्छ है ना, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के चीजें हैं ना, और हम भी साफ सुथरे हैं ना, कहीं हमारे बाल आदि उसमें ना गिर जाए, कहीं कुछ और गंदगी धूल आदि ना गिर जाए। हम कितने सावधान रहते हैं। तो ये चेतना, यदि मूल चीज है जब भक्ति हमारी ठीक रहे, तो अन्य जो सावधानी होती है उसका भी पालन हम करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है सावधानी में कि हम आपस में प्रजल्प नहीं करें। बड़े पैमाने पर भी यदि प्रसाद हम बना रहे हैं, जैसे कोई उत्सव है तो रसोई घर में 500 लोगों के लिए 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है, तो उस समय भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रजल्प नहीं होना चाहिए। जो भगवान का रसोई घर होता है वो सिंहासन या ऑल्टर का ही एक भाग माना जाता है। जब हम भगवान के रसोई घर में प्रवेश करते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम ऑल्टर में आए हैं, सिंहासन में आए हैं, गर्भगृह में आए हैं, ऐसे हमें जान लेना चाहिए। और जो जिन विधि निषेधों का पालन हम ऑल्टर में करते हैं, गर्भगृह में करते हैं, उन्हीं विधि निषेधों का पालन हमें रसोई घर में भी करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यहां विग्रह दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी ज्यादा छूट है। विग्रह के सामने रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अन्यों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, स्वच्छता का पालन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो उन्हीं नियमों का पालन रसोई घर में भी होना चाहिए, उन्हीं नियमों का पालन भगवान के फूल माला बनाते समय भी होना चाहिए, उन्हीं नियमों का पालन भगवान के वस्त्रों की सिलाई करते समय भी होना चाहिए, क्योंकि हम ये साक्षात भगवान के लिए बना रहे हैं। तो संक्षेप में ये हमारी चेतना होनी चाहिए कि हम किन के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। सेवा में कौन सा भाव होना चाहिए और कौन सा नहीं, यही उत्तर अभी ये प्रश्न था। क्या जरा पढ़ के बताएंगे दूसरा? What should be our attitude and behavior with devotees who do service with us? तो जो हमारे साथ में सेवा करते हैं उनके प्रति हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए और हमारी मानसिकता या मनोवृत्ति, ये हमारा भाव उनके प्रति कैसे होना चाहिए? प्रेम का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सहयोग का होना चाहिए, आभार का होना चाहिए। क्योंकि ये सब भक्त मेरे साथ में हैं, इसलिए हम ये सेवा कर पा रहे हैं, अकेले हम नहीं कर पाते, हम मिलजुल कर हम सेवा करते हैं। तो हम इनके साथ में हम रह के करेंगे तो इस तरह का एक सकारात्मक भाव, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अन्यों के प्रति। आयुर्वेद में ऐसे बताया जाता है, कोई वैद्या है यहाँ पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई है? नॉट डाइट। तो ऐसे बताया जाता है कि जब आपको गुस्सा है तो रसोई मत करिए, उस समय आप थोड़ा बैठ जाइए, ठंडे हो जाइए, फिर बाद में रसोई कर लीजिए। क्यों ऐसे? क्योंकि आपका गुस्सा उसमें चले जाएगा, फिर जो खा रहा है वो भी गुस्सा होते होते खाएगा। फिर इसलिए हमारे जो आपस में बर्ताव है वो भी प्रेम और विश्वास के होने चाहिए, और खास करके छोटे छोटे चीजों के बारे में मतभेद नहीं करना चाहिए, और मतभेद हो भी जाएं छोटी चीजों पर कि यहां रखना है, वहां रखना है, इतना डालना है, उतना करना है, तो बड़ी परिपक्वता से, बड़े प्रेम से इन चीजों को सुलझाना चाहिए। झगड़े की बात तो दूर रही, इन ये सब सेवाएं करते समय जब मतभेद भी छोटे छोटे होते हैं तो बड़े प्रेम से ही इनको निपटाना चाहिए। ये सही भाव होगा, ऐसे नहीं होगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमारी सेवा से।
जिसकी जान पहचान नहीं है, ऐसा कोई भक्त अचानक से सेवा मांगने आता है तो उसके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए?
अच्छा, मतलब किस तरह की सेवा? ऑल्टर के ऊपर गार्लैंड में? अच्छा, तो मतलब जो गार्लैंड की सेवा करने आते हैं, हाँ ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि ऑल्टर में प्रवेश सभी को नहीं है, तो बिना जान पहचान वाला कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता ऑल्टर में। जहाँ तक रसोई घर है वहाँ भी बिना जान पहचान वाले कोई व्यक्ति नहीं जा सकते, परंतु जब फूलों की माला बनाई जा रही है तो खुलेआम मंदिर हॉल में बैठा जाता है तो कोई भी आ सकते हैं, हमें सेवा करनी है तो कैसे हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, ये एक नाजुक बात है। थोड़े सोच समझ कर, विचार करके इसका उत्तर भी मुझे देना है। वैसे देखा जाए तो क्योंकि ये भगवान को पहनाया जाएगा, ये माला ये पहनाए जाने वाली है, इसलिए केवल जो स्वच्छ हैं बाहर से और अंदर से वही कर सकते हैं। जिनकी भावना सही है, जो भक्त हैं, जिनको नियम की जान पहचान है और जो पालन कर रहे हैं, जो स्वच्छ अवस्था में हैं, ऐसे ही भक्तों को करना चाहिए। अब कोई बिना जान पहचान वाले कोई आते हैं बाहर से, हम भी सेवा करना चाहते हैं, एक ओर से थोड़ी बहुत श्रद्धा नहीं होती तो वो सेवा के लिए आते हैं क्यों सामने? थोड़ी भावना तो है ना, नहीं तो नहीं आते पूछने के लिए सेवा। दूसरी बात, वो कुछ सेवा करना चाहते हैं, हम उनको मना कर देंगे तो उनको बुरा लगेगा, हो सकता है श्रद्धा में ठोस पहुंच जाएगी, सोचेंगे कि ये क्या, कैसे भक्त हैं, अगली बार नहीं आएंगे मंदिर में, ऐसे भी सोच सकते हैं। और दूसरी ओर हमारे नियम होते हैं, हमें नहीं पता कि ये शुद्ध हैं नहीं हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या खा पी कर आए हैं, क्योंकि हो सकता है उनको नहीं मालूम, वो मांसाहारी भी हो सकते हैं लेकिन थोड़ी भावना भी हो सकती है अच्छी, उन्होंने घर में खाया है क्या है हमें नहीं पता। तो ये एक थोड़ा सा नाजुक मामला है, इसलिए मेरी निजी राय ऐसी है कि थोड़ी सावधानी से रहना चाहिए। कुछ ऐसी अन्य सेवा उनको दी जा सकती है, और जब तक कि उनकी जान पहचान न हो और ऐसे प्रेम से नाजुकी से उनको उनसे बात किया जाए ताकि उनको बुरा नहीं लगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जान पहचान हो जाए कि वो नियम पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर हम उनको धीरे धीरे सेवा में ले सकते हैं, या ऐसी कोई सेवाएं कर सकते हैं जिनके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है नियम पालन की। जैसे कोई मंदिर मार्जन करना चाहे खुशी से करे, तो उनको ऐसे कोई दूसरी सेवा हम दे दें जिससे उनको ये भी लगे कि मुझे नकारा नहीं गया है, मुझे सेवा मिल रही है, भगवान की सेवा मिल रही है, परंतु साथ साथ नियमों का पालन भी हो। तो ये थोड़ा बहुत नाजुक एक संतुलन है जिसका देखभाल हमें करना है। बहुत लंबे सवाल हैं। तो भगवान के रसोई घर में हमेशा भक्त समूह रहते हैं, और हमारे जो कुछ कार्य सेवा करने की जो पद्धति है, जो स्टाइल है, जो गति है, जो पद्धति है, वो सब भिन्न भिन्न होती है। कोई जल्दी जल्दी से सेवा करते हैं, कोई धीरे धीरे से करते हैं, और कई समाजों में, संस्कृतियों में, या जैसे तो उनमें जो है वो मसाला ज़्यादा डाला जाता है, कहीं मीठा बनाया जाता है, कहीं में खट्टा बनाया जाता है। जो उत्तर भारत के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। तो कोई बनाते हैं जिसमें परोठे जो हैं वो घी में ज़्यादा घी का प्रयोग होता है, और कई लोग ज़्यादा लगाते हैं, कोई कम लगाते हैं। तो इसलिए स्वीकार करने के लिए सहनशीलता बहुत होनी पड़ती है। यदि हम सोचते हैं कि मैं ही सही हूं और दूसरे गलत हैं, तो फिर मतभेद होने की संभावना होती है। तो हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम सब अलग अलग हैं, हमारा अलग अलग व्यक्तित्व है, हमारी संस्कृति, पूर्व संस्कृति कुछ अलग है। खराब बुरे की बात नहीं है, केवल अलग है बस। तो इसलिए हम एक दूसरे की विविधता को स्वीकार करके हमें एक दूसरे को के साथ मिलजुल के आगे चलना चाहिए। ये ऐसी विविधता जो है ये एक मतभेद का कारण बनता है कभी कभी। तो प्रश्न शायद ये है कि ऐसी विविधता का सामना कैसे करना चाहिए। एक चीज है कि विविधता अवश्य है, और विविधता नहीं होती तो दुनिया कैसे होता, कितना रूखा सूखा हो जाता। सब लोग एक जैसे होते तो कल्पना कीजिए, दिखने में सब बिल्कुल एक जैसे, कपड़े सब एक जैसे, बात करने जैसे सब एक जैसे, स्वभाव सबका बिल्कुल एक जैसे, कोई मजा नहीं आता जीवन में। तो भगवान के धाम में भी कितनी विविधता है। ललिता देवी का स्वभाव और विशाखा देवी का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, मधुमंगल का स्वभाव, श्रीदामा का स्वभाव अलग अलग है। तो ये स्वभाव अलग अलग होना, हमारे बैकग्राउंड जो है, हमारे पुराने संस्कार अलग अलग होने स्वाभाविक है। तो विविधता है ये समस्या नहीं है, ये अच्छी बात है। तो विविधता के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। फिर भी इस विविधता में कोई सीमाएं होनी चाहिए, कोई नियम होने चाहिए। जैसे कि हर मंदिर में सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, जिनके अनुसार रसोई बनानी चाहिए। अभी यहां भी होगा कि चलो राजभोग के लिए हमें कम से कम इतने स्वीट बनाने हैं, इतने नमकीन बनाने हैं, ये चावल चाहिए, ये इतने चपाती रोटी जो भी है वो चाहिए, सब्जी इतने चाहिए, ये सब होते हैं ना नियम। लेकिन इनमें भी थोड़ी विविधता अच्छी है। सब्जी बना रहे हैं, समझ लीजिए कि कोई दक्षिण भारत की माता जी अब सब्जी बना रही है और दक्षिण भारत के पद्धति से सब्जी बनाई, तो जो मंदिर का नियम है उसका पालन हो गया कि दो सब्जी बनाने हैं। और इतना भी एक सर्वसाधारण नियम है कि बहुत ज्यादा मिर्च भी नहीं डालना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए, थोड़े नियम बनने चाहिए। तो यदि वो दक्षिण भारत के पद्धति से बना रही है, ठीक है, कल कोई उत्तर भारत से आने वाली माता जी आती हैं, वो बनाती हैं, वो अपने ढंग से थोड़ा अलग से बनाएंगी, तो मेरे ख्याल से कृष्ण पसंद करेंगे। अभी हम भी देखिए रोज वही 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 खाएंगे, तो हमें भी थोड़ी विविधता चाहिए ना भोजन में। तो थोड़े सीमा के भीतर विविधता जब होती है तो वो अच्छी होती है, सीमा के बाहर विविधता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप सब बैठ के, आप में से जो वरिष्ठ माताएं हैं, आप बैठ के थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि वो सीमाएं कौन सी होनी चाहिए, कि ठीक है मिर्ची इतना, घी इतना, जो भी है, फिर उसनी सीमा के भीतर हम विविधता को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम इस स्थान से हैं तो उसी स्थान का भोजन बनाते हैं। एक भक्त हमें बता रहे थे, वो दक्षिण भारत के एक सन्यासी हैं, तो बताते हैं जब मैं विविध जगह जाता हूं और लोग पूछते हैं कि कैसा प्रसाद बनाएंगे, वो कहते हैं इडली डोसा छोड़ के जो भी बनाओ। मतलब दक्षिण भारत के प्रसाद को छोड़ के जो भी कुछ बनाओ, क्योंकि वो तो मैं रोज ही लेता हूं, अभी कुछ मैं अलग लेना चाहता हूं। तो भगवान के लिए भी ऐसा है ना, तो भगवान भी विविध प्रकार के व्यंजन चखना चाहते हैं, तो इसमें विविधता हो कोई बात नहीं, परंतु थोड़ी बहुत सीमा या अन्य नियम जो है, बेसिक नियम जो है वो आप बनाइए, उसमें कीजिए। तो इसलिए मतभेद के लिए ऐसे कोई कारण नहीं होने चाहिए। अविवाहित जो लड़कियां हैं, क्या उनको अर्चा विग्रह के लिए भोजन या भोग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ब्रह्मचारी लोग इस प्रसाद का सेवन कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ये गलत फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है। वो भक्ति भाव से बना रहे हैं, भगवान कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, वो इस भाव से नहीं बना रहे हैं कि आगे चल के ब्रह्मचारी खाने वाले हैं। तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छी तरह से बना सकते हैं, हृदय पूर्वक सेवा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। ये भी लंबा प्रश्न है तो मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर। आजकल जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं बाजार में, उनके ऊपर इतने सारे कीटनाशक दवाइयां वगैरह लगाई जाती हैं खेत में भी और बेचते समय भी, कि वो जहरीले हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, और इस तरह से तरह तरह के बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो घर में तो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, ये जो भी माता जी ने लिखा है वो ऐसे बोल रही हैं कि घर में मैं ऐसे सब्जियों से रसोई नहीं बनाती हूँ, परंतु जब मैं भगवान के रसोई घर में आती हूँ तो ऐसे ही सब्जियों से भोजन बनाना पड़ता है। तो इससे बहुत दर्द होता है हृदय में, जबकि मैं जानती हूँ कि हम भगवान के भगवान को ऐसे सब्जियां खिला रहे हैं जिनमें कि बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां आदि जो रासायनिक पदार्थ हैं वो अर्पण किए जिए जा रहे हैं, और फिर बाद में भगवान के भक्त भी इस प्रसाद का सेवन करेंगे। तो इस परिस्थिति को कैसे संभालना चाहिए? और ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए ये एक नियम है कि पहले हमें भगवान के रसोई घर में सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और जो खट्टे व्यंजन होते हैं, साउर फूड, सिट्रस जो सचिन, तो जो खट्टे चीजें होते हैं जैसे मौसम्बी संतरे के जूस होते हैं, वो ठंडी के समय में भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो केवल स्वाद स्वास्थ्य नहीं, इसका ही ख्याल रखा जाता है। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें आपने, जिन्होंने भी लिखे हैं ये बात, कई महत्वपूर्ण बातें आपने इस प्रश्न में किए हैं। पूर्ण परिपूर्ण पूर्णतरह पूर्णतम, ये हमारा दर्शन है। पूर्ण और भी पूर्ण, सबसे अधिक पूर्ण। तो ठीक है, अभी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो सब्जियां जो बाजार में उपलब्ध हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, और तो कोई उपाय नहीं हमारे पास, इसलिए जो है वो अर्पण कर रहे हैं। परंतु आपने जो बातें यहां कही हैं वो सही है, इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी न किसी तरह से हम हमारे भक्त समाज और मंदिर की ओर से ऐसे सजीव खेती करें। सजीव अर्थात जिसमें कोई कीटनाशक दवाइयां आदि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग न किया जाए, ऑर्गेनिक जो कहते हैं, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्जियों को इत्यादि हम उगाएं भक्त समाज में। ये हर जगह मंदिर में जहां भी हम जाते हैं इसका प्रयास हम करते हैं, सब जगह इस बात का प्रचार हम करते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि कहीं खेत हो जाए जहां आप ऐसे सब्जियां उगाएं, फिर मंदिर में भेजें, ताकि ये चीजें मंदिर को आप भगवान को भोग चढ़ाएं। ये सबसे अच्छी बात है। प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है, भक्तों को अनाज उगाना चाहिए या सब्जी जो भी हो, फिर भक्तों के द्वारा वो उसकी फसल काटी जानी चाहिए, भक्तों के द्वारा फिर जो भी और कार्य होते हैं वो करने चाहिए, जैसे अनाज पीट के निकालना इत्यादि, फिर भक्तों के द्वारा उनको मंदिर में ले जाना जाना चाहिए, भक्तों के द्वारा फिर रसोई बनाना चाहिए, भक्तों के द्वारा भोग अर्पण किया जाना चाहिए, तब वो प्रसाद प्रथम श्रेणी का होगा। अब इस श्रृंखला में देखिए हम कहां तक पीछे पीछे जा सकते हैं। भक्त भोग चढ़ा रहे हैं वो तो निश्चित है, भक्त भोग बना रहे हैं वो निश्चित है, लेकिन इससे कि इसके पीछे क्या है, अनाज कहां से आ रहा है, सब्जियां कहां से आ रही हैं हमें पता नहीं, किसान की चेतना क्या है हमें पता नहीं। परंतु इस समय हमारे लिए ज्यादा कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम खरीद लेते हैं बाजार से। परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि भक्तों के द्वारा ही अनाज उगाया जाए, सजीव खेती इसके द्वारा। और हमने सुना कि ऐसे भी कोई प्रकल्प हो रहा है ना, कोई भक्त जमीन खरीद रहे हैं और कुछ ऐसे प्रयास चल रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सबको कोई अच्छी सब्जियां जिसमें विष या जहर नहीं है वो आपको मिल जाएगा। फलों के बारे में भी ऐसे है, जो फल बेचते हैं ना, जहां ये फल बहुत चमक रहे होते हैं ना, उनसे जरा सावधान रहिए। दिखने में बहुत चमकदार और सुंदर दिखते हैं। अब जो कीटनाशक दवाइयां किसान डालता है वो तो डालता ही है, लेकिन बेचने वाला भी एक तरह का वैक्स होता है, रसायन पदार्थ होता है, उससे वो चमकाने के लिए उसको वो घिसते हैं उसके ऊपर। ताकि वो चमकने लगे, और पानी से धोने से भी वो इतने आसानी से जाता नहीं है। तो आजकल सब जगह ऐसे ही हो रहा है, इसलिए हमें अपने अनाज को, अपने सब्जियों को, अपने फलों को बनाना चाहिए, परंतु ये सब जगह संभव नहीं है। तो जिस हद तक संभव है करना चाहिए। और एक भी रास्ता है इसके लिए, कई संस्थाएं हैं, कई दुकानें हैं जो केवल ऐसे ऑर्गेनिक पद्धति से उगाए हुए सब्जी और अनाज बेचते हैं। केवल इतनी चीज है कि ये बहुत महंगे होते हैं, कभी कभी दुगना भी भाव होता है उसका, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, परंतु और कोई उपाय नहीं है। इसलिए यदि ऐसा संभव है तो इसके बारे में सोचिए कि कम से कम जो विग्रह के लिए, अर्च्य विग्रह के लिए बनाया जा रहा है, ऐसे कुछ रास्ता निकाला जा सकता है तो बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और धीरे धीरे से हमारे संस्था में, प्रत्येक मंदिर में इस दिशा की ओर हमें बढ़ते जाना चाहिए। भले एक दिन में न हो जाए, एक हफ्ते में न हो जाए, एक महीने में न हो जाए, परंतु इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक खट्टे जूस आदि का सवाल है, तो हाँ, हमें देखना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से, काल के हिसाब से भोजन देना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान को एक व्यक्ति समझकर भोजन खिला रहे हैं। ये केवल कोई दूर रहने वाले, कुछ निराकार ऐसे नहीं है ना, एक व्यक्ति है। इसलिए जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, एक थाली में रखा जाता है, जितना एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है उतना ही भोजन थाली में भर के देते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये भगवान है तो चलो उनको ढेर सारा भोजन एक साथ में दिया जाए। जगन्नाथपुरी के सिवा और कहीं ऐसे नहीं किया जाता है। तो हम एक थाली में जितना एक व्यक्ति के लिए खाने के लिए उपयुक्त है उतना ही हम अर्पण करते हैं। तो जब हम एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि इस मौसम में ये अच्छा है कि बुरा है। जैसे कई चीजें, खट्टी चीजें, दही है, वो रात को नहीं लेना चाहिए, या कई चीजें हैं जो हमें ठंडी में नहीं लेना चाहिए, कई चीजें हैं जो गर्मी में लेना चाहिए। हरि भक्ति विलास में और भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये बताया गया है कि हमें उस ऋतु के अनुसार जो उपलब्ध हुए वस्तुएं हैं, सामग्रियां, वो अर्पण करनी चाहिए, और वो नहीं अर्पण करना ये भी एक अपराध जैसे बन जाता है। जैसे अब गर्मी के समय में आम मिलते हैं तो आम अर्पण करना चाहिए भगवान को। तो ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार हमें चयन करना चाहिए कि कौन से चीजों को अर्पण करना चाहिए, कौन से चीजों को नहीं अर्पण करना चाहिए। जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए। जगन्नाथपुरी में अनवसर के समय जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं 15 दिन, ऐसे माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान को बुखार हो जाता है, तो उस समय बुखार के अनुसार उनको भोजन दिया जाता है ना, फल फलों का रस दिया जाता है, औषधियां दी जाती हैं। तो उसी तरह से हमारे भगवान के लिए भी हमें सोचना चाहिए, रात के समय क्या खिलाना चाहिए, दिन के समय क्या खिलाना चाहिए, गर्मी में क्या होना चाहिए, ठंडी में क्या होना चाहिए, बारिश के समय क्या होना चाहिए, ये सब सोच विचार करके हमें अर्पण करना चाहिए। आपका प्रश्न ये है कि कई माताएं मिल्क शेक बनाती हैं, यदि वो दोनों विरुद्ध आहार हों या न हो, और कभी कभी ये सही नहीं होता। वैसे मेरा निजी मत ऐसे है कि हमें किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेनी चाहिए इन चीज़ों में। वो हमें समझाएंगे कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के विचार होते हैं, किन आहार सामग्रियों, पदार्थों को आप मिला नहीं सकते हैं। तो जैसे हम हमारे लिए सोचते हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। वैसे पारंपरिक हमारे पद्धति में ये मिल्कशेक आदि नहीं है, ऐसे पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था, ये तो आधुनिक जमाने का एक आविष्कार है। ये हम मिलाते हैं, फिर भी हमारे संस्था में थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, पिज्जा भी कभी कभी अर्पण कर लेते हैं, पास्ता अर्पण कर लेते हैं, तो ठीक है, क्योंकि विदेशों में वो ब्रेड आदि खाते हैं तो वो चीज़ वो अर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहीं कहा था, ठीक है, जैसे जैसे उनके प्रांत हैं, उनकी ऋतु आदि है, वैसे हमें अर्पण करना चाहिए, परंतु हाँ, ये विरुद्ध आहार इत्यादि का विचार हमें करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कोई आयुर्वेद आचार्य आए जिनको, जो अच्छी तरह से हम सबको समझा सके कि कौन सी चीज़ों को हमें मिलाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए, और ऐसे कोई आयुर्वेद आचार्य को बुलाइए जो, जिनको भक्ति के बारे में भी थोड़ी बहुत समझ है, जो समझ पाएंगे, ऐसे सूक्ष्म बातें वो समझ पाएंगे कि ये भगवान के लिए भक्ति है, और जो प्रभुपाद का भाव है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने केवल आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं देखा है, उन्होंने भक्ति की दृष्टि से देखा है कि विविध प्रांतों में, विविध देशों में वहाँ क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, और उनका खान पान कैसे होता है। अब वो लोग ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड बना के अर्पण करते हैं, तो ठीक है, हमें ब्रेड बनाना है तो मैदे का नहीं बनाएं, पूरे आटे का बनाएं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, स्वाद के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे कोई जानकारी सबको हो जाए तो घर में भी ऐसा ही वो कर सकते हैं, और मंदिर में जब प्रसाद बनाया जाता है उस समय भी इन चीज़ों का विचार करके हम कर सकते हैं। रसोई में सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं वह हम प्रचुर मात्रा में करते हैं, प्रचुर है तो हमें दूसरों को बोल नहीं सकते, खुद ही चाहते हैं कि हम कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, पर हम दूसरों को बोल नहीं सकते। कम हो या ज्यादा हो, हमें जानना चाहिए कि कितना उपयुक्त है, कितना उचित है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। हर एक का भाव सेवा करने में अच्छी ही होती है, पर हमें भी हर प्रकार की सेवा करना चाहते हैं। उदाहरण चावल, चावल हो, क्या लिख, कोई पढ़ के सुनाएंगे हमें, क्या पढ़ के सुनाए, अच्छा, मतलब किसी को बताया जाता है कि आप परोठे मत बनाओ, आप केवल चावल बनाओ, लेकिन मेरी इच्छा है परोठे बनाने के लिए, तो आप मुझे पराठा बनाने के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे केवल क्यों सब्जी बनाने के लिए बोल रहे हैं। ये बड़ा नाजुक मामला है मेरे लिए कुछ बोलना, अब ना जाने आपके घर में आऊं प्रसाद लेने के लिए, फिर आप बोलेंगे हाँ आपने ऐसा उत्तर दिया था। ये थोड़ी समझदारी से, आपस में परस्पर समझदारी में से काम निपटाने चाहिए, भले भले हमें सेवा करने का अवसर मिले न मिले, परोठे बनाने के लिए आज नहीं तो कल मिलेगा, हो सकता किसी और को बनाना है। आखिर हम हर तरह से हर बार संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा समझदार रहना है कि इस बार नहीं मिले मौका तो कोई बात नहीं, दूसरी चीजों तो बना रहे हैं ना, कृष्ण के लिए तो बनाने का मौका तो मिला है हमें कम से कम। बड़ी कठिन समस्याएं हमारे सामने ला रहे हैं आप। वो पूछ रहे हैं कि जो भी किसी दल में वरिष्ठ नेता है वहां, वो कोई गलती कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो उनकी बात हम माने नहीं माने या कैसे करना चाहिए? क्या ये इस सेवा से संबंधित है या? खैर उत्तर नहीं देंगे क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो तो समझदारी से काम लेना चाहिए, वैष्णव पद्धति से ही सब चीजें निपटानी चाहिए, गुस्से होकर और एक दूसरे की भलाई बुराई करके नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से आपस में नम्रता से आमने सामने से चर्चा करके इन चीजों का उपाय निकाला जा सकता है। मनमानी भक्ति से समाज में उत्पाद मचता है, कैसे? उदाहरण से समझाइए। क्या हिरण्यकश्यप की तरह है? अच्छा, ये तो इस विषय से इतना संबंधित नहीं है, परंतु हाँ मनमाने ढंग से कुछ भी करने से उत्पात होता है ना। आप मनमाने ढंग से रसोई बनाएंगे तो उत्पात ही होगा ना। आपने बिल्कुल हाँ हाँ जैसे उचित है वैसे सब मिलजुल कर चर्चा करके करें तो अच्छा रहेगा। जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें विविधता जरूरी है, यह तो सही है, पर कई बार ऐसा होता है कि एक मेनू भोग में तीन चार पदार्थ मैदे की बनाई जाती है या कई चीजें तली होती हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोग बनाने के पहले हम सब मिलाकर एक बैलेंस्ड मील बनाएं जिसमें रेपिटिशन न हो और सब कुछ हो हेल्दी और टेस्टी? हाँ ठीक है, ऐसे आपस में मिलकर चर्चा कर सकते हैं, ऐसा बनाया जाए ताकि संपूर्ण आहार भगवान को भी मिले स्वास्थ्य की दृष्टि से। आखिर हमें भगवान का स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है ना, हमें यह भी चाहिए कि भगवान तंदुरुस्त रहें, इतनी कृपा उनको हमारे ऊपर करनी है। प्लीज से अबाउट क्लिनलीनेस, व्हाट स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड। ये प्रश्न है कि स्वच्छता के बारे में कुछ कहें, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए? हाँ प्रभुपाद जी ने कहा था क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि दिव्यता के बाद है स्वच्छता। वैसे भगवान की सेवा में तीन चीजें महत्वपूर्ण है, पहली है भक्ति, दूसरी है स्वच्छता और तीसरा है समय पे, सब कुछ समय पे करना। यदि आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बनाना चाह रहे हैं और अधिक संख्या में कई सामग्री वगैरह बना रहे हैं लेकिन समय पर तैयार नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं, भगवान भूखे रह जाएंगे तो वो अच्छा नहीं। दूसरी तरफ आपने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए परंतु स्वच्छता नहीं है, उसमें बाल गिर गया है, धूल गिर गई है, हमने हाथ ठीक से धोए नहीं वगैरह, तो फिर भगवान को वो प्रसन्न नहीं होंगे भगवान ऐसे भोग से। तो प्रभुपाद जी स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया करते थे, इसलिए हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए स्वच्छता के ऊपर। ये सात्विक एक गुण है जो हर एक में होना चाहिए, केवल मंदिर में नहीं घर के अंदर भी। बाहर की दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि माताएं जब जो भक्त नहीं है मतलब वो बिना स्नान किए हुए रसोई घर में जाते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन यहाँ तो वर्जित है ये सब। तो हर दृष्टि से स्वच्छता का पालन हमें करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत जोर भी हमें देना चाहिए। तो ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं और आप इस मंदिर के बुनियाद है, आधार है। आप सब भगवान को नहीं खिलाते, भगवान के श्रृंगार सेवा आदि नहीं करते, तो फिर कैसे ये मंदिर चल सकता था। तो अवश्य प्रभुपाद जी आप सबके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और भगवान के विग्रह भी, भगवान भी विग्रह रूप में, चाहे कुंज बिहारी मंदिर में हो या वृंदावन चंद्र मंदिर में हो, आपके ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।